मेरे अजी साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 18 मई 2016 है और आज के इस afeis.com में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं अभय सक्सेना भोपाल से, गोविंद सिंह वडोदरा से, यशवंत कुमार डांगी हजारीबाग झारखंड से, बम बम कुमार बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सोनीपत से, रोहित जैन सागर मध्य प्रदेश से और नरेंद्र कुमार रोहतक हरियाणा से। अभय, गोविंद, यशवंत, बम बम, संदीप, रोहित और नरेंद्र, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसी के साथ ही एक सूचना है जो मैं पहले भी आप लोगों को देता रहा हूं लेकिन पिछले 2 दिन से नहीं दे पा रहा हूं, वह करेंट कंटेंट की सूचना है। करेंट कंटेंट जो पिछले कुछ समय से एक नया पॉइंट जो हम लोगों ने शुरू किया है afeis.com में, जिसमें हम लोग खासकर अंग्रेजी अखबारों की जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एडिटोरियल कमेंट होते हैं या जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको ज्यों का त्यों तो नहीं लेकिन सारांश रूप में इस तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं ताकि आप सब जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनकी जरूरतों में वो मददगार हो सके और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हों। तो डेली अभी करेंट कंटेंट के अंतर्गत इस तरह की चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, तो प्लीज आप लोग करेंट कंटेंट पर एक बार जरूर विजिट करें, वो आप लोगों का बहुत थोड़ा सा ही समय लेगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने डेली के उस सिस्टम पर जिसे हम लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा कहते हैं। जैसे ही सिविल सर्विस का रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट, मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों कि कुछ समय तक हम लोग लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत सिविल सर्विस के रिजल्ट को आधार बना करके उसके प्रिपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और हां, जो सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के बारे में जो चर्चा होगी, डेफिनेटली उसमें कहीं न कहीं आप लाइफ के प्रिपरेशन के बारे में भी अपनी चीजें बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। मित्रों, कल जो मुझे कुछ मेल मिले हैं उस मेल के आधार पर मैंने आज लाइफ मैनेजमेंट के अपने विषय को चुना है। और ये जो मेल हैं और आज के जो लाइफ मैनेजमेंट का जो पॉइंट है वो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा स्कोर किए गए मार्क्स से रिलेटेड हैं। दोस्तों, सिविल सर्विस में जो आपको मार्क्स मिलते हैं और जिसके आधार पर आपके मेरिट का निर्धारण होता है, उसमें आप देखेंगे कि आपको बहुत विचित्र किस्म के फ्लक्चुएशंस मिलेंगे। ये जो विचित्र किस्म के फ्लक्चुएशन शब्द का जो मैंने इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही सोच समझ कर किया है। ये विचित्र क्यों है? विचित्र इस रूप में है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि जिसने टॉप किया है या जो फर्स्ट 10 में है या जो 50 में भी है, मतलब ये सब लगभग समान मैं मान करके चलता हूं, थोड़े बहुत नंबरों का अंतर होता है। और पिछले कुछ समय से मैं ये जरूर देख रहा हूं कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में कुछ ज्यादा ही नंबरों का फर्क हो जाता है, इसके बाद तो नंबरों का फर्क बहुत ही माइनर, बहुत ही कम होता चला जाता है। तो ये जो 50 रैंक तक हैं या किसी भी रैंक के स्टूडेंट को ले लीजिए, जब आप उनकी मार्कशीट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक विचित्र सी चीज मिलेगी जिससे मैंने यहां विचित्र नाम दिया है। वो ये कि वो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है, कुछ में तो उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, एक दो में पता लगा कि एक्सेप्शनली हाई है, जिसको स्कोर करना सच पूछे तो एक कठिन काम है। कुछ में आपको लगेगा कि ये तो बेहद कम है, मतलब इतने कम है कि सच पूछे तो शायद उस स्टूडेंट को बताने में भी थोड़ी सी शर्म महसूस हो कि यार, एक स्टूडेंट जो टॉपर है, फर्स्ट 50 में है, 100th में है, उसके किसी पेपर में इतने कम मार्क्स भी हो सकते हैं। और जब आप कम वाले मार्क्स को देखते हैं मित्रों, तो मन में ये संदेह पैदा होता है कि ये जो स्टूडेंट है जो इतना अच्छा है, जो ऑल इंडिया लेवल पर इतनी अच्छी रैंकिंग लेकर के आ रहा है, इस पर्टिकुलर पेपर में ही उसके मार्क्स कम क्यों हैं? और यदि इस पर्टिकुलर पेपर में ही उसके मार्क्स कम हैं तो फिर वो कैसा टॉपर या कैसा 100 रैंक वाला या कैसा सिविल सर्वेंट जो पूरे के पूरे सेलेक्टेड लिस्ट में कहीं ना कहीं स्थान बना रहा है। तो मित्रों इस तरीके की बातें हम लोगों के दिमाग में आती हैं और इस तरह की बातें स्टूडेंट्स के दिमाग में आई भी हैं और उसको आधार बनाकर उन्होंने मेल भी लिखा है। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको इससे पहले कि अपनी बात को उदाहरणों के जरिए समझाऊं मैं आपको तीन स्टूडेंट्स के मार्क्स बता रहा हूं टोटल मार्क्स और फिर मैं एक स्टूडेंट्स के डिटेल मार्क्स को लेकर के इस तैयारी के पैटर्न पर मैं बात करूंगा, है ना। मैं जो आपको मार्क्स बता रहा हूं किसी के जो डिटेल में मार्क्स बता रहा हूं तो आप उसको ये मत लेकर के चलिएगा कि मैं उस स्टूडेंट की व्याख्या कर रहा हूं क्योंकि मैं उस स्टूडेंट को जानता नहीं, उनकी तैयारी के बारे में नहीं जानता, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानता, तो सही व्याख्या तो मैं नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए जब तक आप पूरी तरह से चीजों को नहीं जानते। लेकिन हम लोग एक अनुमान लगा करके चल सकते हैं, अनुमान पर आधारित व्याख्या है और सच पूछे तो उस अनुमान को भी हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपनी तैयारी के लिए एक रास्ता निकाल सकें, एक रास्ता बना सकें, दैट्स ऑल, उससे अधिक और कुछ भी नहीं है। मित्रों फर्स्ट जो थ्री टॉपर्स हैं मुझे उनके नंबर एक स्टूडेंट जो विपुल वार्ष्णेय हैं उन्होंने लिख करके भेजा है। उन्होंने बताया है कि जो टीना डाबी जो टॉपर है टीना डाबी के जो कुल मार्क्स हैं वो है 1063 1063 यानी कि 2025 में उनको 1063 नंबर मिले हैं। उनके ये नंबर अगर पिछले साल की हम टॉपर्स को लें तो उनसे थोड़ा सा ईरा सिंघल से थोड़े से कम है, शायद 15-20 नंबर कम होंगे। एग्जैक्ट मैं कभी कंपेयर करके आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो टीना डाबी जो टॉपर हैं उनके टोटल मार्क्स 1063 आउट ऑफ 2025 और परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो परसेंटेज आते हैं 52.49 यानी कि 52.5% राइट। इसके बाद जो सेकेंड रैंक पर हैं जो अथहर आमिर जी हैं उनके टोटल मार्क्स हैं 1018 1018। तो इस तरह आप देखेंगे कि टोटल मार्क्स में काफी फर्क आपको दिखाई देता है, लगभग लगभग 55% का, लगभग 45% का आपको अंतर दिखाई 45 नंबरों का आपको अंतर दिखाई दे रहा है और मैं समझता हूं कि 45 मार्क्स का अंतर जो है वो काफी है, लगभग 2.25% का अंतर हो जाता है। हालांकि 2025 नंबर टोटल के आधार पर अगर हम 45 मार्क्स के डिफरेंस को देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, परसेंटेज में तो केवल 2.25% के आसपास होगा, लेकिन फिर भी एक बड़ा अंतर कहा जा सकता है। इसके बाद जो थर्ड रैंक पर जो जसमीत संधु हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 1014 हैं और परसेंटेज के आधार पर उनके मार्क्स हैं 50.07%। अब आप देखिए कि जो फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक के बीच में जो मार्क्स का अंतर है वो है टोटल में 45 मार्क्स, लेकिन सेकेंड और थर्ड के बीच में जो अंतर है आप देखिए कि टोटल मार्क्स के अंतर है केवल चार नंबर के फर्क में सेकेंड और थर्ड का डिसीजन हो गया है। और अगर आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में भी जाएंगे तो अब आप भूल जाइए कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो 45 मार्क्स का टोटल डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको आगे भी दिखाई देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम परसेंटेज के आधार पर देखें फ्रेंड्स, जनरली हम लोग जब ग्रेजुएशन करके आते हैं और जब हमें कोई बताए कि 52% पर तो आप आईएएस में टॉप कर जाएंगे तब हमें लगता है कि यार फिर क्या है ये आईएएस का एग्जामिनेशन सिविल सर्विस का, 52% वो तो हम वैसे ही लाते रहते हैं, मतलब बड़े आराम से आ जाते हैं। सेकेंड पोजिशन में जो है उनके हैं 50.27% और थर्ड पोजिशन में जो है उनके हैं 50.07%, दैट्स ऑल। तो सुनने पर ऐसा लगता है लेकिन मित्रों ये मार्क्स लाना आसान नहीं है, यही तो सिविल सर्विस है। देखिए सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिविल सर्विस के करेक्टर को समझना होगा, सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के करेक्टर को समझना होगा, नॉट सिविल सर्विस, इसके करेक्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा और तब कहीं जाकर आप सिविल सर्विस की सही तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज 52% बहुत सामान्य से परसेंटेज लगते हैं, लगता है कि हम ला सकते हैं। सिलेबस भी आप देखेंगे तो सिलेबस भी आपको कोई बहुत चैलेंजिंग सिलेबस नहीं लगेगा, जनरल स्टडीज अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ी है या आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट रहे हैं तब आप सिलेबस देख करके यही धारणा बनाएंगे कि यार ये सब तो पढ़ा लिखा समझा हुआ मालूम पड़ रहा है, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, यही धारणा बनती है। मैंने तो यहां तक पाया है फ्रेंड्स कि जब लोग अनसॉल्व पेपर भी देखते हैं तो क्वेश्चंस भी जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हाँ लिख देंगे हम, जो हमने पढ़ा है यही तो पूछा गया है और उनको लगता है कि हम लिख देंगे और लिख करके आते हैं और स्कोर नहीं कर पाते। मतलब कितना पुअर स्कोर होता है मेंस में एक ऐसा स्टूडेंट जो प्री क्वालिफाई कर चुका है, मतलब प्री क्वालिफाई कर चुका है मतलब उसका एक लेवल तो है, और जब वो मेंस में अपीयर होता है तो इतने कम मार्क्स होते हैं कि शायद वो अपने मार्क्स आपसे शेयर ना करना चाहे। एसेज 250 नंबर का कितने नंबर मिले हैं, 40 नंबर। ऑप्शनल पेपर में कितने मिले हैं, 250 नंबर के पेपर हैं तो एक में 25 मिला है और दूसरे में 42 मिला है, इस तरह के स्कोर होते हैं। जनरल स्टडीज में कितने मिले हैं तो फर्स्ट पेपर में 37 नंबर, सेकेंड पेपर में 42 नंबर, थर्ड पेपर में 24 नंबर और फोर्थ पेपर में 70 नंबर, ये स्कोर होते हैं फ्रेंड्स और सब पेपर 250 नंबर के होते हैं। अब आप सोच करके देखिए कि सिलेबस आपको मालूम है, आपने तैयारी भी कर ली है और आपका एक आपने कॉन्फिडेंस का लेवल भी गेन कर लिया है कि नहीं नहीं मैं परीक्षा दे लूंगा और क्वेश्चंस थोड़े थोड़े समझ में भी आ रहे हैं और मैं परीक्षा में लिख करके आऊंगा आ भी जाऊंगा, तो फिर इतना पुअर स्कोर क्यों है? मित्रों इसी बात को समझना होगा, जब तक आप इस रियल स्टोरी को नहीं समझेंगे, इसके पीछे की रियलिटी को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने सिविल सर्विस के प्रिपरेशन को सच पूछे तो सही दिशा नहीं दे सकेंगे। इसीलिए मित्रों जानबूझकर, मुझे मालूम है कि लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में जो मैं इस प्रिपरेशन पर बात कर रहा हूं तो मेरे से बहुत से ऐसे भी प्रिय श्रोता होंगे जिन्हें थोड़ी सी निराशा लग रही होगी क्योंकि इसे पेरेंट्स भी सुनते हैं, जिन्हें सिविल सर्विस से कोई लेना देना नहीं है वे भी इसे सुनते हैं, कम से कम लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट को, और मैं उन सबसे थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए माफी चाहूंगा और इसके बाद फिर हम उसी पैटर्न पर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करना अपने आप में एक लाइफ मैनेजमेंट जैसा है, इसीलिए उसमें से बहुत सी चीजें मुझे लगता है कि हम सब अपने लाइफ के लिए भी निकाल सकते हैं, इसीलिए थोड़े दिन के लिए मुझे माफ करें और मेरा साथ दें ताकि मेरे जो नौजवान साथी हैं उनके लायक मैं अपने आप को थोड़ा बहुत सिद्ध कर सकूं। तो मित्रों ये 3 फर्स्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स बताने के बाद अब मुझे जो कृपेश कुमार हैं अहमदाबाद से, उन्होंने जो टीना डाबी हैं जो हमारी टॉपर रही हैं उनके मार्क्स भेजे हैं, अब मैं उनके मार्क्स आपको बताता हूं। टॉपर के मार्क्स मतलब हमारे लिए तो अब इससे हाईएस्ट मापदंड कोई है ही नहीं है, एज फार एज द रिजल्ट ऑफ 2015 इज कंसर्न हम मान करके मान सकते क्या है, मानना ही चाहिए कि इससे हाईएस्ट स्कोर करना टोटल संभव नहीं था, अगर संभव होता तो कोई कर चुका होता और वो टॉप कर जाता। तो टीना डाबी जी के मार्क्स देखिए, सभी पेपर 250 नंबर के होते हैं, इंटरव्यू केवल 275 मार्क्स का होता है, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। ऐसे में उन्होंने स्कोर किया है 145 नंबर। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को यह दोहराना भी लग रहा हो क्योंकि लोगों में उत्सुकता होती है और उन्होंने मार्कशीट देख भी ली होगी, लेकिन चूंकि एनालिसिस मुझे करनी है तो मुझे कुछ चीजें दोहरानी भी हैं। ऐसे में 145, मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि ईरा सिंघल ने ऐसे में 160 स्कोर किया था, वो पिछले साल की टॉपर थी, 160 यानी कि ऐसे में इनके पिछले साल के टॉपर से कम रहे, अगर ऐसे में वो उनके बराबर ले आती तो उनके टोटल मार्क्स भी शायद काफी कुछ ईरा सिंघल के नजदीक पहुंच चुके होते। मैं जिस विचित्रता की बात कर रहा हूं आप उसी विचित्रता को देखिएगा, ऐसे में उन्होंने स्कोर किया 145, ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, 150 नंबर आने पर उनके स्कोर 60% के आसपास हो जाते। अब आप जनरल स्टडीज में देखिए जो सबसे इंटरेस्टिंग पेपर होता है, जनरल स्टडीज फर्स्ट में है उनके 119 नंबर। अब इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट करते जाइए, है ना, कि कितने परसेंट ये हो गया, है ना, लगभग लगभग समझिए कि 48% के करीब बैठेगा, 47-48%। अब जो जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर देखिए, और इसी को लेकर के मैं आज आपसे थोड़ी सी बात भी करूंगा क्योंकि दो तीन स्टूडेंट्स ने स्पेशली पूछा है और कहा है कि सर जो टॉपर रही हैं और बाकी में उनके इतने अच्छे स्कोर हैं तो जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर में क्या सच में उनके 84 मार्क्स आए हैं, मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा है कि एक स्टूडेंट जो टॉपर है, जो ऑल इंडिया टॉपर है, उसके 84 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। भाई सही में आए हैं या नहीं आए हैं ये दावा मैं भी नहीं कर सकता। कृपेश ने जो मेरे पास मार्कशीट भेजी है मैं उसी के आधार पर कह रहा हूं कि हां 84% आए हैं, और कृपेश ने जो भेजा है वो कहीं ना कहीं से लेकर के ही भेजा होगा, अपनी तरफ से भेजा नहीं है, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि 84 मार्क्स आए हैं। लेकिन आश्चर्य नहीं करना चाहिए, यही तो विचित्रता है। आश्चर्य क्यों नहीं करना चाहिए मैं आपसे चर्चा करूंगा। उनके जनरल स्टडीज थर्ड पेपर में 111 मार्क्स आए हैं 111, और जनरल स्टडीज फोर्थ पेपर में उनके 110 मार्क्स आए हैं। मित्रों इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो है कि अगर हम जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर को छोड़ दें तो रिमेनिंग जो तीनों पेपर्स हैं उनमें उनके मार्क्स बहुत स्टैटिक हैं। आप देखिए उनके स्कोर की खूबसूरती है कि फर्स्ट में 119, थर्ड में 111 और फोर्थ में 110। ये मतलब एक विचित्र चीज है, अदरवाइज इसमें भी बहुत फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन उनके सेकेंड पेपर में, जनरल स्टडी सेकेंड पेपर में, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, और आज हो सकता है कि ये हिस्सा हमारा थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले ले। इसके बाद आप देखेंगे कि ऑप्शनल में देखिए, ऑप्शनल उनका पॉलिटिकल साइंस था, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ही उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जहां तक मेरी जानकारी है। शायद उन्होंने ये भी कहा था, उनके फादर का ही स्टेटमेंट था शायद, कि जब वो 12th में थी तो पॉलिटिकल साइंस उनका सब्जेक्ट था और उसमें 100 में 100 मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में, कुछ इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो पॉलिटिकल साइंस की उनकी इतनी स्ट्रांग बैकग्राउंड है और वो स्ट्रांग बैकग्राउंड का उनको फायदा मिला कि पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में उनको 128 मार्क्स मिले, जिसे आप बहुत अच्छा मार्क्स नहीं कह सकते, 51% के आसपास है, 51%। लेकिन आईएएस के हिसाब से मत कहिए कि मैंने कह दिया कि बहुत अच्छा नहीं कह सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि सेकेंड पेपर में उन्हें जो स्कोर किया है वो 171 मार्क्स है। आप देखिए कि इसी में ही कितने नंबर का फर्क हो गया है, लगभग आप समझ लीजिए कि 43 नंबर का फर्क हो गया, 43 उन्हीं एक ही सब्जेक्ट के पेपर में। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट में 128 और पॉलिटिकल साइंस सेकेंड में 171, एक ही सब्जेक्ट है, उसके दो पेपर हैं, लेकिन इतना फर्क है। तो मित्रों अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस आपकी जिज्ञासा को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश, शांत क्या, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज ये अधूरा रह जाएगा। हालांकि मुझे मालूम है कि लगभग 17 मिनट का समय बीत चुका है कि 84 नंबर उनके जो जनरल स्टडीज सेकेंड में क्यों आए हैं, जबकि जो जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर है उसका पूरा का पूरा जो बेस है वो पॉलिटिकल साइंस है। ये बड़ी विचित्र सी चीज आपको लगेगी, पॉलिटिकल साइंस उसका बेस है। आप जाकर के देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स सिनेरियो पर सवाल पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पर सवाल पूछे जाते हैं, और ये सब पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने पढ़ा हुआ था। तो जिसकी और फिर उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस 12th में उन्होंने हायर स्कोर किया, ग्रेजुएशन में भी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो फिर इसमें तो सबसे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे जनरल स्टडीज में, और अगर सबसे ज्यादा नहीं भी आए तो 110 के आसपास तो पहुंचना ही चाहिए था जो दूसरे पेपर्स में उन्होंने पहुंचा है। इकोनॉमिक्स उन्होंने स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा है, लेकिन इकोनॉमिक्स में देखिए 111 नंबर है, जनरल स्टडीज फर्स्ट में तो लगभग 119 नंबर ही है, जिसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, चलिए हिस्ट्री मान करके चलते हैं कि हिस्ट्री में वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे तो उनको यहां हिस्ट्री का फायदा मिल गया होगा। लेकिन फिर पॉलिटिकल साइंस में 84 क्यों है? ये इसलिए मित्रों कि आपको पॉलिटिकल साइंस जो जनरल स्टडीज के जो थर्ड सेकेंड पेपर है उसमें 84 स्कोर करने वाले आपको बहुत अधिक स्टूडेंट मिल जाएंगे। मेरे पास जो हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक 779 या 776 इस रैंकिंग जो आई है, जो दिलमिल सिंह जिनके बारे में मैंने चर्चा की है, उनकी भी मार्कशीट मेरे पास है। सोचिए कि जिनका 775 रैंक से ऊपर 776 या 779 कुछ इस रैंकिंग है दोस्तों, उनका जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर में 86 मार्क्स है। सोचिए 86 मार्क्स, और मजेदार बात है कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी है, वो भी टीना से दो नंबर अधिक है। मैं यहां तुलना नहीं कर रहा हूं मित्रों, मैं इसके रहस्य को बताने के लिए की कोशिश कर रहा हूं, जिसे मैंने विचित्र नाम दिया है कि सिविल सर्विस भी कुछ एक विचित्र सा एग्जाम है। मुझे ऐसा लगता है, मैं दोहरा रहा हूं कि मैं उनसे मिला नहीं हूं, मैंने उनसे इसके बारे में कोई बात नहीं की है। जो कुछ भी मुझे जानकारियां मिल रही हैं वो YouTube में डले हुए जो उनके कुछ बातें हैं, इंटरव्यूज हैं, उनके आधार पर, आप लोग जो मुझे मुहैया करा रहे हैं उनके आधार पर, अखबारों से जो चीजें मिल रही हैं मैं उसी को आधार बनाकर चल रहा हूं। इसलिए अगर कहीं फैक्चुअल मिस्टेक्स हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन चलिए हम एक विश्लेषण तो कर ही सकते हैं। मुझे लगता है मित्रों कि जो इस पेपर में टीना जी के साथ जो एक दिक्कत हुई है वो ये है कि टीना जी जनरल स्टडीज और ऑप्शनल में अंतर नहीं कर सकी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट में अंतर नहीं कर सकी। और मैं समझता हूं कि आप सबके प्रिपरेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। समझिए कि जनरल स्टडीज क्या है और सब्जेक्ट क्या है। नो डाउट कि उनकी नॉलेज एज फार एज पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न, कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, पॉलिटी इज कंसर्न, स्पेशलाइजेशन की है, वो स्पेशलिस्ट है इन सब्जेक्ट की। पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मतलब ही है किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना, तो पॉलिटिकल साइंस की वो स्पेशलिस्ट हैं। दुर्भाग्य उनके साथ शायद ये हुआ कि वो अपनी स्पेशलिस्ट होने से अपने आप को उबार नहीं पाए। जब वो पॉलिटिकल जो जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर जो पॉलिटिकल साइंस पर जी बेस्ड है, जब उसके वो आंसर लिख रही थी तो ये उनका जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में बार बार अपनी घुसपैठ कर रहा था, तो नॉलेज उसमें ज्यादा चला गया और जनरल गायब हो गया। इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा हूं। सामान्य रूप में आपको सुनने में यह बहुत जनरल सी चीज लगेगी, क्योंकि जनरल स्टडीज को समझना आपके लिए इसलिए बहुत जरूरी है कि 2025 नंबर के टोटल पेपर में 1000 नंबर सिर्फ जनरल स्टडीज के चार पेपर्स के हैं, और निबंध भी कहीं न कहीं मैं उसे जनरल स्टडीज का ही पार्ट मान करके चलता हूं, और जो इंटरव्यू है एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न उसे भी मैं जनरल स्टडीज का पार्ट मान कर ही चलता हूं। हो सकता है आप मेरी इस मानने से एग्री न करें। केवल आपके ऑप्शनल पेपर्स जो 500 नंबर के हैं, जो आपके टोटल मार्क्स का 25% कवर करता है, वो जरूर आपसे स्पेशलाइज्ड की मांग करता है, जिसके लिए यूपीएससी ने बहुत क्लियर कट लिखा हुआ भी है। अगर आप उसके सिलेबस को ध्यान से देखें, उसमें क्लियर लिखा है ऑनर्स डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन से ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा नीचे, उसको हम कहते हैं ऑनर्स डिग्री। लेकिन इनफैक्ट जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मुझे लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन से भी ऊपर के क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएशन मान करके चले, अदरवाइज फिर वो वाकई में ऑनर्स डिग्री के ही लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, जब आप जनरल स्टडीज पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप जनरल साइंस भी पढ़ते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। लेकिन आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए होगा कि सब्जेक्ट क्या है और जनरल क्या है। प्लीज इस जनरल को समझने की कोशिश कीजिए, इस पर इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको रेखांकित कीजिए। अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ते चले जाएंगे तो नो डाउट आप धुरंधर बन सकते हैं, आप उसमें स्पेशलाइज्ड कर सकते हैं, आप बड़े बड़े प्रोफेसर से इस पर बहस कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्फ्रेंस में आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसके स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन जनरल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना होगा मित्रों। और मुझे लगता है कि शायद टीना जी से वही कहीं कुछ चूक हो गई होगी, अनजाने में ही हो गई होगी, कि वो जनरल स्टडीज को जनरल स्टडीज न समझ करके उन्होंने इस जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर को एक तरह से पॉलिटिकल साइंस का ही एक पेपर समझ लिया, उसी तरीके से उन्होंने अपने आंसर लिखे, और जिसके कारण उनको फिर उस तरीके के उतने जितने नंबर मिलने चाहिए थे उतने नंबर नहीं मिल पाए। तो मित्रों, मैंने केवल अपनी तरफ से पूरी तरह से क्षमा याचना के साथ इसका विश्लेषण करने की कोशिश की है। यदि कभी मुझे और उनके बारे में जानकारी मिली, या कभी मुलाकात हो सकी, या कुछ मैं और चीजें जान सका, तो फिर और चीजें मैं आपको ऐड करके इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे इसके पीछे यही कारण दिखाई दे रहा है। राइट फ्रेंड्स, तो अब मैं इस लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट के बाद अब आता हूं दोस्तों AIR न्यूज पर। आज हम लोगों के पास वक्त कम है, और सच पूछे तो मैं जब उसमें ज्यादा वक्त लेता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट में, तो मुझे मालूम रहता है कि AIR वाले में बात करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। हालांकि किसी भी टॉपिक को लेकर के कितनी भी देर बात की जा सकती है, अखबारों की क्लिपिंग्स तो होते ही हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर होते हैं, उनके एक एक टॉपिक्स पर ही लेकर के पूरे के पूरे एक ऑडियो तैयार किया जा सकता है, और स्पेशल ऑडियो तो होता ही एक टॉपिक पर है। तो लेकिन मैं उसके महत्व को समझते हुए कि आज मुझे किस पर ज्यादा जोर देना चाहिए, केवल मेरे अपने इंटरेस्ट के आधार पर नहीं, वो आप लोगों की जरूरत के आधार पर मैं निर्णय लेता हूं। इसलिए उसका बहुत ही एयर टाइट डिवीजन करके न चलें, उपयोगिता के आधार पर उसका मूल्यांकन करें। मित्रों, आज मैं आपसे तीन चार चीजों के बारे में इशारे के रूप में मैं आपसे बता रहा हूं न्यूज को आधार बनाकर। पहली बात तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें मुझे अभी आपको बतानी है जिनकी चर्चा मैंने अपने डेली आरडीओ में नहीं की है। उसका कारण यह था कि जो न्यूज आती थी उस न्यूज के समय में ये चीजें, ये टॉपिक्स नहीं आए। इसके बाद फिर एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स के फॉर्म में आए, लेकिन उतने अच्छे नहीं आए जिनको मैं आपको बताता, लेकिन मैं इनके बारे में आपसे आगे चलकर के कभी चर्चा करूंगा। लेकिन जो दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं ताकि आप सतर्क हो जाएं। इन टॉपिक्स पर आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने को मिल रहा है तो प्लीज आप उन्हें पढ़ें, और जैसे ही मेरे पास कुछ ऐसी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, फिर चाहे वो करंट कंटेंट के रूप में प्रोवाइड करूं या डिस्कशन के रूप में प्रोवाइड करूं। एक है मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मानचित्र विधेयक, ये अभी अभी भारत सरकार लेकर के आई है। इसके डिटेल्स अखबार में नहीं आए हैं। विधेयक ऐसा लाया जा रहा है, पारित हो रहा है, इस पर एडिटोरियल कमेंट भी आया, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुआ कि इसके पॉइंट वाइज बहुत अच्छी चीजें नहीं उभर करके आ सकी कि ये वास्तव में है क्या। सामान्य रूप में केवल यह है कि जैसे हम नक्शा बनाते हैं, भारत का मैं एक नक्शा बना रहा हूं तो मुझे भारत का नक्शा बहुत परफेक्ट तरीके से बनाना होगा, उसमें मुझे भूल नहीं करनी है, क्योंकि आप देखते हैं कि नक्शे को लेकर के विवाद हो जाते हैं, यानी कभी चीन कुछ ऐसा नक्शा बना देगा जिसमें अरुणाचल प्रदेश को उसने भारत से गायब कर दिया है, पाकिस्तान कोई ऐसा नक्शा बना देगा जिसमें कश्मीर को कहीं गायब कर दिया, तो इस तरह के कभी कभी अभी एक दो घटनाएं ऐसी भी कि कुछ संस्थाओं ने इस तरह के गलत नक्शे बना दिए, गूगल वगैरह भी इस तरह की गड़बड़ियां कर देते हैं। तो इससे एक तरह से सच पूछे तो किसी भी कंट्री की सॉवरेंटी को धक्का पहुंचता है कि भाई आप कौन होते हैं जो हमारा देश है, हमारे देश की अपनी सीमाएं हैं, जो बकायदे आधिकारिक सीमाएं हैं, और उसको आप अपना नक्शा बना करके उसको गायब कर रहे हैं, चाहे जानबूझ करके कर रहे हो या लापरवाही के कारण कर रहे हो। तो इसको रोकने के लिए, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार एक विधेयक लेकर के आई है जिसे मानचित्र सूचना विधेयक कहा गया है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसके बारे में अगर आपको कहीं मिले तो आप देखिएगा। न्यूज में जो बात थी वो ये कि पाकिस्तान ने इसका विरोध किया है क्योंकि भारत का जो अपना नक्शा है उसमें उसने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया जो पाकिस्तान नहीं मानता, तो आप मत मानिए। उसने फिर यूएनओ के सामने यह मामला उठाया, संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्योंकि उसका मानना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका समाधान होना चाहिए, जो भारत ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है। न्यूज आपने सुना कि यह भारत का आंतरिक मामला है, एक भारत के विधायी का अधिकार है, वो अपने नक्शे के बारे में क्यों नहीं सोच सकता है। तो ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें किसी भी दूसरे देश को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये एक इश्यू है जो थोड़ा सा आगे हो सकता है कि ये और भी बढ़े, क्योंकि अब ये मामला डिबेट में आ रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता, ये डिबेट में नहीं आता, तो ये चीज हो सकता है कि सिविल सर्विस के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। दूसरी खबर जो थी मित्रों, जो है महिलाओं से जुड़ी राष्ट्रीय नीति की घोषणा हुई है। अखबारों में यह भी बहुत अधिक नहीं आया है, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे मैगजीन्स में इसके बारे में कुछ चीजें, जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की मैगजीन्स होती हैं उसमें कुछ चीजें जरूर आएंगी, और जब जैसे इस पर आर्टिकल्स एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कुछ पॉइंट्स उसमें बताए हैं कि राष्ट्रीय महिला नीति के अंतर्गत कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी चर्चा हम लोग आगे चल करके कभी करेंगे, लेकिन वो बहुत ही सामान्य सी चीजें हैं। कोई लेकिन जब तक पूरे डॉक्यूमेंट्स पास में नहीं आ जाते तो कोई भी कमेंट करना मुझे लगता है कि उपयुक्त नहीं होगा। तीसरी चीज मित्रों, एक जो खबर है वो आप कंटेंट के रूप में कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ये है कि सुशील कुमार जो हमारे कुश्ती बाज हैं उनको रियो ओलंपिक के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया। कुछ दिनों से आप चैनल्स पर इसके विवाद को देख रहे होंगे, इससे सुशील कुमार बहुत निराश हुए हैं। उनकी जगह पर नरसिंह यादव को भेजा जा रहा है, जो भारतीय कुश्ती महासंघ ने उनको सेलेक्ट किया है। तो ये जो सुशील यादव हैं ये फिर दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ चले गए हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी भारतीय कुश्ती महासंघ से इसके बारे में जवाब मांगा है। देखते हैं कि क्या होता है। खेलों में किस तरह से राजनीति होती है आप ये देख चुके हैं। अगर राजनीति नहीं भी होती है तो एक बहुत विचित्र सी चीज होती चली जा रही है जो बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। आप देख रहे हैं, जिसके बारे में कल हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा भी की थी, कि किस तरीके से सारी चीजें अब न्यायालय द्वारा निर्धारित हो रही है। हर चीज का फैसला न्यायालय कर रहा है, मतलब ये बहुत ही एक दुखद बात है, चाहे ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो, चाहे हमारा लेजिस्लेचर फेलियर हो, चाहे हमारे लोगों का इन संस्थाओं पर से गायब हो चुका विश्वास हो, पूरे सिस्टम से हम विश्वास खो रहे हैं, केवल जुडिशरी सिस्टम में विश्वास रख रहे हैं, या जो भी रीजन हो दोस्तों, लेकिन ये बहुत दुखद है क्योंकि इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता है। इसके बाद मित्रों एक और छोटी सी खबर थी, वो इशारे के रूप में मैं आपको बता रहा, ये भी कंटेंट के रूप में है, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि जो विदेश के जो विश्वविद्यालय हैं, जो फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो भारत में आप आ रही हैं और भारत में आए, लेकिन उन्हें अपना विस्तार जो है ना भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के ही करना होगा, मतलब वो इंडिपेंडेंटली यहां काम नहीं कर सकती। उसका कारण यह है कि अगर उस विश्वविद्यालय से किसी नागरिक को कोई शिकायत हुई, किसी स्टूडेंट को कोई शिकायत हुई, तो कम से कम उसके खिलाफ जो भी न्यायालय प्रकरण होंगे या जो भी शिकायतें होंगी भारत में रहकर किया जा सकेगा और भारतीय न्यायालय के द्वारा ही उनका फैसला भी हो सकेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई विश्वविद्यालय विदेश का हो गया तो सारे काम बिल्कुल सही तरीके से ही कर रहा है। जैसे दो तीन दिन पहले की खबर में आपने सुना होगा कि जो साइप्रस विश्वविद्यालय से अगर कोई डिग्री लेना चाहता है तो सरकार ने कहा है कि आप बहुत सोच समझ करके पता कर लीजिए कि विश्वविद्यालय सही है नहीं है, तब आप वहां पढ़ने जाइए, वहां की डिग्री के लिए कोशिश कीजिए। तो इस तरह के उन देशों में भी होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये स्टेटमेंट उन्होंने हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने दिया है। और खासकर हायर एजुकेशन के बारे में मैंने देखा है कि पिछले दो तीन सालों से कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछ लिया जाता है, तो यह आपके लिए एक कंटेंट का काम करेगा। तो मित्रों ये एआईआर न्यूज के बारे में थी। एक और मैं आपको विधेयक के बारे में बता दूं जिसको लेकर के कभी देखते हैं कि क्या मटेरियल मिलता है, अभी तक अखबारों में इसके बारे में भी बहुत डिटेल में नहीं आया है, इकोनॉमी के पेज में बहुत थोड़ी सी चर्चा हुई है, और जो है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हमारी जो खासकर बौद्धिक संपदा कानून के बारे में जो एक राष्ट्रीय जो नीति जो घोषित होनी थी, वो विधेयक नहीं राष्ट्रीय नीति घोषित होनी थी, ये नीति अभी हमारे सामने उतने डिटेल्स में नहीं आ पाई है, लेकिन डेफिनेटली कभी न कभी हमारे सामने ये चीजें आएंगी, देखते हैं कि वो किस तरीके से आती है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये नीति की बात है या विधेयक की बात है, चल इसे हम लोग आगे चलकर क्लियर कर लेंगे, दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। तो मित्रों ये एआईआर न्यूज से था की बातें थी। अब मैं अखबारों की क्लिपिंग्स पर आता हूं, चूंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, कुछ चीजें आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है नॉलेज सेंटर के प्रेस क्लिपिंग्स में, आप जाकर के देख लेंगे पढ़ लेंगे, उसके बारे में चर्चा करने जैसे ऐसा कोई विशेष टॉपिक आज उस तरह का है भी नहीं। तो दोस्तों अंत में मैं आता हूं ईमेल पर, सभी अपने ईमेल लिखने वाले दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका बहुत बहुत आभार भी। मित्रों अभी दो तीन दिनों से अगर शायद आपने महसूस किया हो कि शायद जो डेली ऑडियो की जो वॉइस की जो क्वालिटी है उसमें आपको बदलाव महसूस हुआ होगा, और सच पूछे तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि देखें इस बदलाव के बारे में कौन कमेंट करता है, इसको लोग स्टूडेंट्स हमारे पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। खैर पकड़ा तो आप लोगों ने होगा ही, या हो सकता है कि बहुत थोड़ा बदलाव महसूस हुआ हो तो उस तरह से पकड़ में नहीं आया हो, लेकिन एक स्टूडेंट ने जो हमारे फोर्थ बैच के स्टूडेंट भी रही है पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, उन्होंने इस बदलाव को पकड़ा और उन्होंने एकेडमी को इसके लिए धन्यवाद दिया है। तो पूजा राजपूत को भी मैं एकेडमी की ओर से बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्हें अब ये जो नया सिस्टम है, नई जो वॉयस है, ये अच्छी लग रही। मैं एक बात बता दूं कि मेरी वॉयस जो की त्यों है, अगर जो कुछ भी कमाल है तो ये इंस्ट्रूमेंट्स का कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने अपने गले में कुछ बदलाव नहीं किया है। तो मित्रों अब मैं कुछ दोस्तों के नाम ले रहा हूं, उसमें है उत्कर्ष दीप पटना से, मनीष सिंगल चुरू से, अंकित मंगल जयपुर से, नवीन दुबे गोरखपुर से, डॉक्टर सौरभ रंजन न्यू दिल्ली से, अभिजीत नामदेव पाटिल सांगली से, भरत कुमार आनंद शर्मा ज्योति कनिक उज्जैन से, भरत मिश्रा गोरखपुर से, रजिया इलाहाबाद से, मनोहर दत्त मिश्रा पटना से, विवेक अग्रवाल भरतपुर राजस्थान से, और अश्वनी द्विवेदी सतना मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।